ओम शांति। आज मेरा परम सौभाग्य है आप सभी को आदि पिता ब्रह्मा बाबा से परिचित कराने का। हर एक अपने शारीरिक पिता को जानते हैं। हमारे अविनाशी पारलौकिक पिता शिव बाबा का परिचय भी आपको मिल चुका है और ये है अलौकिक पिता, हम सर्व मनुष्य आत्माओं के आदि पिता ब्रह्मा बाबा। कैसे परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का दिव्य कार्य करते हैं। परमात्मा स्वयं निराकार है, इसलिए जब वे कलियुगंत सतयुग आदि के संधि काल संगम युग में सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो साधारण मानव तन का आधार लेते हैं, क्योंकि परमात्मा कर्म बंधनी नहीं है। जो हम मनुष्यात्माओं की तरह मां के गर्भ से जन्म ले, परमात्मा तो कर्मातीत है, पर इस मनुष्य लोक में आकर जब सतयुगी दुनिया का स्थापना का कार्य करना है तो कोई मानव तन का माध्यम चाहिए, इसलिए वे परकाया प्रवेश करते हैं। भक्ति में हम शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, परंतु वो शिव परमात्मा सृष्टि पर कब आते हैं, कैसे आते हैं और वो आकर क्या करते हैं, ये हम नहीं जानते। रात्रि माना कोई 12 घंटे की रात्रि की बात नहीं है, हम शिवरात्रि के पर्व पर रात्रि जागरण करते हैं, व्रत उपवास करते हैं और इस प्रकार शिवरात्रि का पर्व मना लेते हैं कि वो शिकारी ने अनजाने में सारी रात हिरण की राह में बेलपत्र तोड़ता डालता गया और नीचे शिवलिंग था तो वो शिवजी प्रसन्न हुए, वो हिरनी भी अपने प्रॉमिस अनुसार शिकारी के पास आ गई तो शिवजी कैसे सबको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले गए। तो ये कहानी है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो हम नहीं जानते हैं। तो वास्तव में ये कलियुगंत अज्ञान अंधकार की रात्रि का समय, जब सारा विश्व अज्ञानता के पंजे में स्वयं को भुला हुआ आत्मविस्मृत देहभान में फंसा हुआ होता है, तब परमात्मा शिव सृष्टि पर अवतरित होते हैं और सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। तो ये अज्ञान अंधकार दूर करने की बात है, आत्मज्ञान के लिए जागृत रहने की बात है। कोई 24 घंटा जागरण करने से आत्मा जागृत नहीं हो जाती, पर जागरण करना, जगराता करना मीन्स ज्ञान के लिए, ज्ञान से जागृत हो जाना। तो भक्ति में आज तक शिवालय बनाते हैं, बाकी सब मंदिरों में प्रवेश द्वार से मूर्ति ले जाकर के प्रस्थापित करते हैं, लेकिन शिवलिंग को प्रवेश द्वार से नहीं ले जाते हैं। मंदिर बनाते हैं और ऊपर से शिवलिंग उतारा जाता है और फिर उसका ऊपर का घुमट बनाया जाता है। तो ये यादगार बताती है कि परमात्मा शिव कर्म बंधन में बंधे हुए नहीं है, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। सिर्फ हर 5000 वर्ष के अंत, हर कलियुग के अंत सृष्टि पर आते हैं, तो ज्ञान देने के लिए तो मुख चाहिए, मानव तन का आधार चाहिए। तो साधारण मानव तन में प्रवेश करते हैं और उससे कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा जिसका पूर्व नाम, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही, जिसका पूर्व नाम दादा लेखराज, जो हीरे जवाहरात के एक व्यापारी थे, ये नहीं चल रहा है और फॉन्ट भी उल्टे आ रहे। जिसका पूर्व नाम दादा लेखराज था, सिंध हैदराबाद जो भी पाकिस्तान में है, सिंध हैदराबाद में कृपलानी परिवार में 1876 15 दिसंबर 1876 उनका शारीरिक जन्म हुआ। उनके पिताजी एक प्राइमरी स्कूल के आचार्य थे, लेकिन परमात्मा को इसके द्वारा विशेष कार्य कराना होगा, तो ये अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ से आगे चलकर जौहरी बने, प्रसिद्ध जौहरी बने। और उन्होंने हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू किया। बाबा वैष्णव थे, सिंधी होते हुए वैष्णव आहार विहार से भी वैष्णव थे, बहुत धनी होते हुए भी बहुत दानी थे, श्री नारायण के उपासक थे और रोज गीता का अध्ययन करते थे। तो बाबा का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सात्विक था। उस जमाने के बहुत जाने माने प्रसिद्ध ज्वेलर थे और उनका राजा महाराजाओं के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे। वाइसरॉय के साथ भी उनके बहुत नजदीकी संबंध थे अपने बिजनेस के हिसाब से। परंतु बाबा का जीवन बहुत नियम संयम वाला था। बाबा उन सभी नामी ग्रामी लोगों को बुलाते थे, पार्टी देते थे, पर उसमें शराब मांसाहार आदि नहीं होता था। माना बिजनेस से भी ज्यादा जीवन और जीवन की धारणाओं को महत्व देते थे। राजा महाराजाएं कहते भी थे कि लखेराज बाबू आपकी पार्टी तो फीकी होती है, तो बाबा उसको जवाब देते थे कि भाई मैं तो आपको सच्चे हीरे देता हूं और उसके रिटर्न में आप तो मुझे कागज के नोट देते हैं, तो उसके लिए मैं कोई अपनी धारणाएं तो नहीं तोड़ूंगा ना। मतलब अपने नियम मर्यादाओं को वे महत्व देते थे। पर बाबा बहुत अनन्य भक्ति भाव था, उसको बहुत भगवान की खोज थी। एक होता है कि व्यक्ति अंधश्रद्धा क्रियाकांड, परंतु बाबा बहुत विलक्षण बुद्धि वाले थे, इसलिए भल भक्ति करते थे पर अंदर से सत्य की खोज थी कि आखिर सत्य क्या है। बाबा की एक पर्सनल डायरी मिली जिसमें मैंने इस ज्ञान से पूर्व भी कैसे उनका चिंतन होता था, वो कैसे मन से बातचीत करते थे और इंद्रिय जीत जितेंद्रिय बनने के लिए वो स्वयं कैसे पुरुषार्थ करते थे, अपने आप से संवाद करते थे, वो सारा उसमें लिखा हुआ है। तो बाबा ने इस खोज के कारण बाबा ने 12 गुरु किए थे। एक गुरु किया, उससे उनको और नहीं संतुष्टता हुई तो और ऐसे 12 गुरु किए थे, क्योंकि उनको अंदर से ये खोज थी कि आखिर भगवान क्या है, कौन है और कैसे हम माया जीत बन सकते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम अपना जीवन का उद्धार सुधार कैसे कर सकते थे। बेशक बाबा गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते थे, तो गुरु का बुलावा काल का बुलावा ऐसे बाबा कहते थे। एक बार बाबा के घर में बाबा के बेटे का ही जन्मदिन का सेलिब्रेशन था और अचानक गुरु का बुलावा आया, तो बाबा वो सब प्रसंग छोड़कर गए। तो सबने बताया कि आज प्रोग्राम कर लो फिर कल जाना, तो बोला नहीं, गुरु का बुलावा काल का बुलावा है। माना इतना रिस्पेक्ट भी करते थे और स्वयं भक्ति के सात्विकता के संस्कार होने के कारण अपने परिवार में भी बच्चों में भी ये संस्कार डालते थे। बड़ी बेटी की शादी बाबा ने एक योगी राज से की थी, दूसरी एक बेटी की शादी में भी बाबा ने उस समय चांदी का मंदिर बना करके दिया था। तो ये सब मतलब बताता है कि बाबा इतने बड़े हीरे जवाहरात के व्यापारी और उस जमाने के धनी को होने के बावजूद भी बहुत सात्विक संस्कार वाले थे। तो इस प्रकार बाबा के दर पर हमेशा गुरुओं का आना जाना और लोगों का दान के लिए आना जाना ये सदा लगा रहता था। बाबा को दो बेटे थे और तीन बेटियां थी। इस प्रकार बाबा का ये परिवार था। ये बाबा कैसे दान पुण्य करते थे, तो सर्वप्रथम 1936 में बाबा बॉम्बे में अपने मित्र के घर गए थे, जो मित्र उनका बबुलनाथ मंदिर के नजदीक रहता था। तो वहां बाबा को सर्वप्रथम विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था। माना इतनी अनन्य भक्ति, नौधा भक्ति, ईश्वर के प्रति इतना अनन्य भाव कि बाबा को ये साक्षात्कार हुआ था। उसके बाद बाबा हैदराबाद से, क्योंकि बाबा की बिजनेस की एक स्थान कलकत्ता भी था, हैदराबाद, कलकत्ता और बॉम्बे, तीन जगह बाबा बिजनेस के हिसाब से आना जाना करते थे। तो हैदराबाद से जब बाबा कलकत्ता जा रहे थे तो बीच में वाराणसी में अपने मित्र के पास रुके और उसके बंगले में रहे थे। तो जब सुबह उठकर परमात्मा को याद कर रहे थे, उनको ये दिव्य साक्षात्कार हुआ, ज्योतिर्लिंगम का साक्षात्कार हुआ। माना एक ज्योति उनका उनको साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। जिस महाविनाश के साक्षात्कार को देखकर उसमें बाबा ने देखा कि कैसे निकट भविष्य में इस विश्व का महापरिवर्तन होना है, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा होलसेल मौत होंगे, ग्रह युद्ध होंगे और अणु युद्ध के द्वारा महाविनाश होगा। तो ये 1936 की बात है जब अणु शस्त्र बने भी नहीं थे। 1945 में प्रथम बेबी बॉम्ब का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उपयोग किया गया था, पर बाबा को 1936 में ये साक्षात्कार में दिखाया परमात्मा ने कि कैसे ऐसे आकाश से अग्नि के गोले बरस रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। तो इसको देखकर मतलब बाबा का मन जो है वो और अधिक इस दुनिया से उपराम हो गया और बाबा ने निर्णय कर लिया कि ये परमात्मा का ही मुझे संकेत है। तो कलकत्ता, वाराणसी से कलकत्ता गए तो वहां जाकर पार्टनर को कह दिया कि भाई जो भी मेरा हिस्सा बनता हो वो हिस्सा मेरा दे दीजिए, अब मैं बिजनेस समेटना चाहता हूँ। अब वास्तव में सारा बिजनेस बाबा की प्रतिभा के कारण था। तो उसके पार्टनर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लखीराज बाबू क्या कह रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि नहीं, आप ज्यादा मुंझो नहीं, जो हिसाब बनता हो वो आप मुझे दे दो, अब मैं ज्यादा इसमें व्यस्त रहना नहीं चाहता हूं। तो पार्टनर ने जो उनका हिस्सा दिया वो लेकर के बाबा कलकत्ता से वापस हैदराबाद आ गए। बाबा ज्यादा अंतर्मुखी और जैसे दुनिया से एक वैराग्य और अंदर में परमात्मा से प्रति अधिक प्यार मग्न ऐसी स्थिति में बाबा रहने लगे। जब बाबा कलकत्ता पहुंचे तो उनके जो लौकिक चाचा जी थे वो भी बहुत सीरियस थे, लास्ट श्वास पर थे। तो उनके पास जब वो गए तभी भी उनको फिर साक्षात्कार हुआ कि कैसे आत्मा की लाइट पूरे शरीर में पांव से अंगूठे तक गई प्रकाश, और फिर तेज समेटता समेटता कैसे वो आत्मा फिर वहां से निकल गई। तो ये आत्मा साक्षात्कार भी बाबा को हुआ। और उसके साथ साथ चूंकि बाबा नारायण के उपासक थे तो उनको फिर से विष्णु का, श्री कृष्ण का, श्रीनाथ जी का साक्षात्कार हुआ। तो इन साक्षात्कार के आधार पर बाबा को जैसे एक ईश्वरीय संकेत मिलता गया, ये एक तरफ विनाश का साक्षात्कार और दूसरी ओर बाबा को नई दुनिया की कैसे होगी, कैसे आएंगी, क्या करना होगा, मुझे ये सब कुछ भगवान क्यों दिखा रहे हैं। तो उन्होंने समझा कि मेरे गुरु जी की कृपा से कोई ये साक्षात्कार हुआ। तो जब गुरु जी उनके घर आए, सत्संग चलना था, तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, बताया कि आपकी कृपा से मुझे बहुत बहुत ऐसे साक्षात्कार हुए। तो जैसे गुरुजी को तो कुछ पता ही नहीं था, तो बाबा को समझ में आ गया कि ये कोई गुरुजी की कृपा से नहीं हुआ है, क्योंकि उनके गुरुजी के चेहरे के हाव भाव से लगा कि ये उन्होंने नहीं कराए हैं। तो बाबा के घर में सत्संग चल रहा था और बाबा ये धारणा रखते थे कि सत्संग के बीच कभी उठते नहीं थे, माना पूरा ध्यान से गुरुजी का प्रवचन सुनते थे। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बाबा बीच से ही उठकर धीरे कदम से अपने कमरे की ओर जाने लगे। तो पीछे पीछे उनकी पुत्रवधू ने ये देखा कि भी बाबा तो कभी बीच सत्संग उठ के जाते नहीं हैं, आज बाबा कैसे उठ के जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है। तो वो भी पीछे पीछे उनके कमरे के तरफ गई और कमरे में जाके देखा तो बाबा तो अपनी योग अवस्था में बैठे थे और पूरा कमरा अखंड लाल, माना लाल प्रकाश से भरा हुआ था और बाबा बिल्कुल तेजोमय स्टेज में थे। बाबा के मस्तक से बहुत ज्योति की किरणें दिख रही थी और बहुत धीमी आवाज में बाबा के मुख से ये आवाज सुना कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। माना जैसे स्वयं परम शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा ने बाबा के तन में प्रवेश किया और बाबा के मुख से अपना परिचय दिया कि मैं वही ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, शिव हूं शिव हूं। जब बाबा उस अद्भुत अनुभव की स्थिति में से नीचे आए तो बाबा ने और साक्षात्कार की बात बताई कि बाबा को ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई लाइट थी, कोई माइट थी, और कैसे ऊपर से सितारे नीचे आते थे और धरती पर आकर वही सितारे देवी देवता बन जाते थे, राजकुमार राजकुमारी बन जाते थे। तो बाबा को ये संकेत मिला, आवाज आया कि तुम्हें ऐसी नई दुनिया स्थापन करनी है और उसके लिए तुमको निमित्त बनना है। तो ये बाबा को प्रेरणा मिली। पहले विनाश का साक्षात्कार हुआ कि ये कलियुगी दुनिया खत्म होगी और फिर ये सतयुगी दुनिया स्वर्ग के नजारे दिखाई दिए कि ऐसी दुनिया बनाने के लिए तुम्हें निमित्त बनना है। तो बाबा तो और गहन चिंतन में पड़ गए कि मैं कैसे ये नई दुनिया बनाऊंगा। तो बाबा उस अंतर्मुखी स्थिति में चले गए और बाबा ने अपने घर में ही सत्संग शुरू किया। अधिक ज्ञान का विस्तार तो था नहीं, पर मैं शरीर से अलग आत्मा हूं ये सत्य समझ में आ गया था और परमात्मा वो परम ज्योति है और नई दुनिया बनाने का संकेत दे रहे हैं। इस बात के आधार पर उन्होंने अपने घर में सत्संग शुरू किया। ओम की धुनी बाबा कराते थे क्योंकि ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, पर बाबा स्वयं इतनी दिव्य स्थिति में थे, ये परमात्मा शक्ति और उनकी मदद कि जो भी सत्संग में आते थे बाबा को देखते थे तो वो भी ध्यान में चले जाते थे, उनको भी साक्षात्कार होता था। तो पूरे हैदराबाद में माना ये एक लहर फैल गई कि कैसे जो भी जाता है वहां सत्संग में उनको साक्षात्कार होता है। तो बाबा के घर में काफी माताएं कुमारियां कुछ परिवार ऐसे उसमें सत्संग में आने लगे। उसी समय ये जो फोटो है मातेश्वरी जगदम्बा जो 16 वर्ष की आयु में आई कुमारी थी, पर वो भी एक ऐसी दिव्य व्यक्तित्व बाबा ने उस आत्मा को परख लिया कि ये वो ही, इसका नाम राधे था। तो बाबा को लगा ये वो ही सतयुगी राधे हैं, तो पूरे ओम राधा उसको कहते थे। तो ये ओम की धुनी कराते थे इसलिए लोगों ने इसको ओम मंडली नाम दे दिया कि ये ओम मंडली में जो जाते हैं उनको ऐसे सहज साक्षात्कार हो जाते हैं। तो बाबा ने इसको जिम्मेवारी दी सत्संग कराने की और बाबा परिवार सहित कश्मीर चले गए और गहन चिंतन करने के लिए और दिव्य अनुभव करने के लिए। इधर ओम राधे जिसको हम मम्मा कहते हैं क्योंकि वो प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने, बाबा ने उनको निमित्त बनाया। तो जब कश्मीर से बाबा वापस आए, वहां से बाबा रोज अपने अनुभूतियों के चिंतन के रोज पत्र लिखते थे और इधर मम्मा सत्संग में आने वालों को ओम की धुनी करा करके वो जो बाबा लिखकर भेजते थे वो पत्र उनको सुनाते थे, सत्संग में आने वालों को सुनाते थे। वो नहीं हुआ क्या रिमोट? तो बाबा ने अपने परिवार को भी वहां आत्मा का पाठ पक्का कराया। वहां का एक प्रसंग मैं कहना चाहूंगी कि एक हमारी शांतामणि दादी जी थे जिनके पिताजी वो भी कश्मीर में घूमने गए थे और वहां से पास हो रहे थे, तो बाबा की एक बेटी बाहर बैठी हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि एक कश्मीर में दो स्थान है ना, गुलमर्ग है और दूसरा पहलगांव। हाँ पहलगांव। तो उन्होंने पूछा कि बेटी पहलगांव का रास्ता पता है, यहां यही जाता है? तो बाबा ने परिवार को भी आत्मा का पाठ पक्का कराया था, जो भी बाबा को अनुभूति होती थी कश्मीर में अपने परिवार को भी ये ज्ञान के संस्कार दिए। तो उनको भी इतना निश्चय और नशा, तो उसने ये जवाब दिया कि पहलगांव का रास्ता पता नहीं है, परमधाम का रास्ता पता है। इतना माना परिवार ने भी इस ज्ञान से सुंदर अनुभव किए। तो जो भी इस तरफ मम्मा के द्वारा सत्संग की वृद्धि हुई, बाबा और अनुभूतियों में गहराई में गए और लोग भी बहुत अच्छे अनुभव करने लगे, और उन दिव्य अनुभवों के कारण जो माताएं बहने भाई परिवार आते थे तो उनके अंदर भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया। उनकी वाणी में व्यवहार में मिठास आई, क्योंकि जब व्यक्ति आंतरिक दिव्य अनुभव करता है तो फिर वाणी पर भी संयम आता है। तो इस प्रकार उन्होंने जीवन में बहुत परिवर्तन हुए, उनके बोलचाल वाणी व्यवहार बहुत अच्छे हो गए, आहार विहार शुद्ध होने लगे। तो सारा मतलब सिंध हैदराबाद में एक धूम मच गई कि इस सत्संग में जाने से बहुत सुंदर अनुभूतियां होती हैं। पर जैसे ये माताएं बहने इस अनुभूतियों में आगे बढ़े, अपने जीवन में धारणाएं करने लगे, पवित्रता को महत्व दिया, अब उनकी बुद्धि भोग से उपराम होने लगी, तो कईयों के पतियों के द्वारा, परिवार के बड़ों के द्वारा बहुत उनके ऊपर बंधन आने लगे, विघ्न डाले गए कि भाई ये तो वहां जा रहे हैं तो अब इनकी बुद्धि सांसारिक जीवन में नहीं है। ये बाबा का वहां मकान था जिसमें बाबा ने ये कार्य शुरू किया था। ये मम्मा बहुत पढ़ने में, लौकिक पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, स्कूल में भी मतलब बहुत लीडरशिप की क्वालिटी थी, सितार बजाती थी, बहुत सुंदर गाती थी। तो उसके कारण जो बाबा ने सत्संग शुरू किया था उसमें भी काफी विकास हुआ। तो बाबा ने आकर फिर नेक्स्ट ईयर ही 1937 में ही क्योंकि परिवार ने भी पूरा सहयोग दिया, बाबा ने अपनी चल अचल पूरी संपत्ति भगवान के आदेश पर, क्योंकि बाबा शिव बाबा का ये आदेश मिला कि तुम्हें ये विश्व कल्याण का कार्य जिसके लिए ये ज्ञान यज्ञ रचना है, पर इस विश्व कल्याण का कार्य माता और बहनों के द्वारा करना है। वो समय जब समाज पुरुष प्रधान था, महिलाएं गौण थी, पर्दे के पीछे थी, दीवारों में सीमित थी, इतना पढ़ाते भी नहीं थे, 1937 का ये समय। पर भगवान के आदेश पर बाबा ने 5 बहनों के नाम पर ट्रस्ट बनाया, जिसमें मम्मा थी ये दादी प्रकाशमणि जी, एक और शांतामणि दादी जी जो हमारे आगे मैं फोटो आपको दिखाऊंगी, जिसके पिताजी कश्मीर में घूमने गए थे और वहां ये जवाब दिया था कि भाई परम नाम का रास्ता हम बता सकते हैं। तो वो भी फिर बाबा के पास अंदर मकान में गए और उस समय उन्होंने बाबा से ज्ञान लिया, फिर वो भी परिवार सहित समर्पित हुए। तो 1937 में बाबा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी 5 बहनों के नाम समर्पित की, 5 बहनों के नाम ट्रस्ट बनाया गया और मम्मा को ओम मंडली की मुख्य माता माना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में उनको निमित्त बनाया गया। और भी कई परिवार समर्पित हुए और बाबा ने विधि पूर्वक, क्योंकि बाबा ने खुद भी आज भी अपने पास ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेखराज ने पूरे परिवार सहित समर्पण होने का जो पत्र लिखा था वो अभी भी है। तो फर्स्ट ब्रह्मा बाबा ने वो लिखा था मम्मा के नाम, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया कि तुमको इन माताओं बहनों के आगे समर्पित होना है और इनके द्वारा कार्य करना है। तो फिर इस यज्ञ की तब से लेकर आज तक यही मेथड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ आके रह जावे, ऐसा नहीं है। अक्सर यहाँ कई बार कई परिघरों से कोई चला जाता है, कोई माता बहन तो यहाँ खोजने आते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाके बैठ गए होंगे। तो हम उनको बताते हैं कि भाई ये कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है कि यहाँ कोई भी आके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ विधि पूर्वक हम सभी समर्पित भाई बहनों के फाइल्स बने हुए हैं, इसमें हम खुद अपना समर्पण पत्र लिखते हैं, माता पिता की परमिशन का पत्र होता है और विद्यालय के जो भी नियम संयम मर्यादाएं हैं उनका एक पत्र होता है। तो इस प्रकार बाबा ने शुरू से ये नियम बनाया कि माता पिता की स्वीकृति से ही मतलब यहाँ समर्पित करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए, क्योंकि यहाँ आकर भी संगठन में रहना है, सेवा करना है और जीवन भर पवित्रता अन्न शुद्धि इन नियमों की धारणा करनी है। तो वो पवित्रता सहनशीलता एडजस्टमेंट त्याग तपस्या ये सब धारणाएं चाहिए। यहाँ के कोई कोने में बैठ के कोई माला फेरनी है, ऐसा नहीं है। तो जो भी शुरू में सत्संग में आए छोटे बड़े सब, तो बाबा ने तो ये नियम बनाया तो जो माताएं बच्चों को लेकर आई थी, जिनके घरों से परमिशन पत्र भी थे, तो उन बच्चों के लिए फिर बाबा ने एक बोर्डिंग स्कूल शुरू किया। तो आज जो हमारी दादियां है, जैसे दादी प्रकाश मणि जी, वो 15 साल की आयु के थे। दादी जानकी बड़ी आयु में आए, वो 21 वर्ष की आयु के थे। मम्मा 16 वर्ष की आयु की थी। आदरणीय दादी रत्ना मोहिनी जी जो जॉइंट हेड है, वो 12 साल की आयु के थे। दादी गुलजार जी तो बहुत छोटी आयु के, 9 वर्ष की आयु के थे। तो इस प्रकार से वो दादियां उस समय बच्चे या टीनेज की स्टेज में थे, तो उनके लिए बाबा ने बोर्डिंग स्कूल शुरू कराया ताकि वहां उनको लौकिक विद्या भी पढ़ाई जाए और साथ साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान योग की अलौकिक पालना भी दी जाए। अब जिन माताओं को, कुमारियों को, उनके माता पिता ने, किसी के पति ने, भाइयों ने आने नहीं दिया, तो वो परीक्षाएं फिर शुरू हुई, क्योंकि एक तरफ उनको लगन लग चुकी थी भगवान से और दूसरी ओर वो लोग सामाजिक लोकलाज के कारण उनको आने नहीं देना चाहते थे। तो फिर लौकिक परिवारों के तरफ से विरोध और हंगामा, लड़ाई झगड़ा और ये क्या बोलते हैं, स्ट्राइक करना, इस प्रकार के बहुत विघ्न शुरू में विद्यालय के सामने आए। ये बाबा का भतीजा था विश्व किशोर भाई, जो बाबा के साथ साथ सबसे पहले समर्पित हुए और बाबा का राइट हैंड बने। माना प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में बहुत ही समर्पणमयता और जिम्मेवारी से उन्होंने कार्य किया। और ये दो भाई थे, क्योंकि आबू में जब आए तो हम लोगों ने इन सबको देखा है। ये दादा विश्व किशोर सफेद बाल वाले, जो विद्यालय के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को शुरू से संभालते रहे, और दूसरे हैं चंद्रहास दादा, सिंधी लोग, दादा मीन्स बड़ा भाई और दादी मीन्स बड़ी बहन, उस हिसाब से वो लोग दादा कहते, दादी कहते। ये तो अब दादियों की एज के हिसाब से भी है, पर उस समय वो लोग जो कहते थे तो वो भाई, दादा मीन्स बड़ा भाई, दादी मीन्स बड़ी बहन। तो ये सारा कंस्ट्रक्शन विभाग को संभालते थे। ये शुरू में देखो कितनी छोटी आयु के ये लोग हैं। बाबा उनको फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते थे और ये ड्रेस पहनाया था, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने के कारण बाबा का इन बहनों में शक्ति भरना था कि मैं स्त्री हूं। ये बॉडी कॉन्शियसनेस जब तक होता है तो कोमलता, नाजुकता, भय, ये सब कमजोरियां हमारे में रहती है। बाबा का ज्ञान तो ये है कि मैं शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली आत्मा शक्ति है, तो वो स्त्रीपन का भान, देह भान मिटाने के लिए बाबा ये यूनिफॉर्म पहनाते थे, एक्सरसाइज कराते थे। बाबा वहां कराची में, हैदराबाद में जब थे तो समुद्र किनारे क्लिफ्टन पर भी ले जाते थे। तो देखो ब्रह्मा बाबा 1876 में जन्म लिया, 1936 में बाबा को ये साक्षात्कार हुए और बाबा ने समेट लिया अपना धंधा और इस कार्य के लिए निमित्त बने 60 वर्ष की आयु पर। और ये जो समर्पित थे वो सारे ही 20-25 वर्ष और उससे नीचे की आयु के सब थे। पर भगवान का ये आदेश, इसलिए उनको पूरा विश्वास था कि इन्हीं माताओं और बहनों के द्वारा तुम्हें स्वर्ग के द्वार खुलने। कहां शास्त्रोक्त मान्यताएं कि शंकराचार्य जी कहते स्त्री नरक का द्वार है, और कहां सत्य ये कि विषय विकार के वश जो भी आत्मा है वो हर आत्मा नरक का द्वार है। पर जब हम पवित्रता और दिव्य गुण धारण करते हैं तो हम ही स्वर्ग के द्वार बनते हैं। तो ये शुरू में जो दादियां हैं वो इस आयु की। तो फिर काफी विघ्न भी हुए, मारपीट भी हुई, छोटी आयु वाली बहनों को केस करके वापस भी उनके माँ बाप ले गए। पर जिनको सत्य का रंग लग गया, परमात्मा के प्यार का अनुभव हो गया, उन्होंने कितने भी सितम सहन किए परंतु इन्होंने बाबा को नहीं छोड़ा। हैदराबाद में बाबा का एक भवन, लखीराज भवन, विरोधियों ने उसको भी आग लगाने का कार्य किया था, और कैसे बाबा ने पूरी ओम मंडली को दूसरा बिल्डिंग ओम निवास में स्थानांतरित कर दिया था। तो ये जो शास्त्रों में गायन है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगी थी, वास्तव में ये वही संगम युग का, परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं और परमात्मा की आज्ञा पर चलने वाले, परमात्मा से प्यार करने वाले ही सच्चे पांडव है। और जब सही अर्थ में हम भगवान के ज्ञान पर चलते हैं तो वही समाज कैसे विरोध करता है ना। आज हम सीता, सरस्वती, अम्बा दुर्गा की पूजा करेंगे, पर हमारी बेटी उस देवी की तरह पवित्र जीवन जीना चाहे तो हम नहीं जीने देते हैं। हम हनुमान की पूजा करेंगे पर हमारा बेटा हनुमान जैसा बाल ब्रह्मचारी बनना चाहे तो हम उनको नहीं, तो हम कहते लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, शादी तो करनी ही पड़े करके हम ही विरोध भी करते हैं। तो सेम सिचुएशन शुरुआत में बनी, पिकेटिंग भी हुए, धरने भी हुए, क्योंकि पूरा सिंधी समाज विरोधी बन गया। इतनी माताएं बहनें घर बार छोड़ के भगवान के कार्य में समर्पित होने लगे तो उनके परिवार वालों ने भी विरोध किया, क्योंकि उन माताओं बहनों को पवित्र जीवन जीना था और उनके पति भाई पिता वगैरह उसको उस मार्ग पर जाने नहीं देते, तो फिर ऐसा विरोध विघ्न का वातावरण बना। तो बाबा ने हैदराबाद से फिर कराची में शिफ्ट किया, क्योंकि हैदराबाद एक धार्मिक शहर और कराची थोड़ा सा फॉरवर्ड शहर। तो बाबा ने वहां, बाबा अपना परिवार, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वातावरण बन गया, तो बाबा अपना परिवार और जो भी उनके लौकिक रिश्ते वाले इस यज्ञ में समर्पित हुए थे उन सबको लेकर बाबा कराची चले गए। और जिन परिवारों के तरफ से माताएं बहनें जिनको परमिशन थी वो सब एक अलग बंगले में मम्मा के साथ कराची में रहने लगे, और वहां ये सत्संग फिर से चालू रहा। पर जो छोटी आयु की बहनें जिनको उनके माँ बाप जबरदस्ती वापस घर ले गए थे। जब उनको पता चला कि बाबा तो कराची गए, मम्मा कराची गए, ये सब कराची गए, तो वो लोग भी फिर घर से वहां पहुंच गए वापस यज्ञ में। फिर वापस कराची में भी काफी विघ्न हुए, कोर्ट केसेस हुए, गवर्नमेंट तक बातें गई, कमिटी बनी, बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे। उस कमिटी ने सारा चेक किया, गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया, और फिर वहां के कुछ बड़े लोगों के साथ से, जिन कन्याओं को बहुत बंधन थे, उनके परिवार वालों ने भी आखिर इनकी लगन देखकर उन सब कन्याओं को परमिशन दी, और 12 साल कराची में ये कार्य चलता रहा। बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे चार मुख्य सब्जेक्ट है, उस पर पूरा उन सबको प्रशिक्षित किया। और एक त्याग, तपस्या और सेवा की जीवन कैसी होती है, उनके संस्कार बाबा ने उसमें डाले। तो बाद में फिर कराची से 14 वर्ष टोटल, 2 वर्ष हैदराबाद और 12 साल कराची, 14 वर्ष की साधना के बाद जब इस यज्ञ में समर्पित हुए भाई बहने, परिपक्व बने, तो बाबा ने फिर आखिर विश्व सेवा का, ये जो पिकेटिंग हुई थी, ये छोटे छोटे बच्चे ये यज्ञ में समर्पित थे अपनी माताओं के साथ। इनको पूरा दिन बाहर अंदर आश्रम में जाने नहीं दिया, जहां बाबा रहते थे। तो ये बच्चियां इतनी छोटे छोटे, ये धूप में खड़े रहे पर हिले नहीं वहां से। इनको इनके ये दादा चाचा, ये सारे जो उनके थे सिंधी समाज के, उन्होंने बहुत मतलब प्रलोभन दिए, भाई बिस्किट खाओ, चॉकलेट खाओ, पर इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बिना खाए पिए धूप में खड़े रहे। फिर आखिर गवर्नमेंट के द्वारा उनको मदद मिली और कैसे वो सारा समाप्त हुआ, कराची शिफ्ट हो गए। और 14 वर्ष के बाद 1950 में जब ये लोग मैच्योर हो गए, स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए, तो बाबा ने कहा अब विश्व सेवा करनी है, भारत में स्थानांतरित होना है। तो वहां से ये बड़ी स्टीमर में ये 400 भाई बहने आवश्यक सामान को लेकर, बाकी सब बंगले बंगले सब छोड़ के, जबकि वहां गवर्नमेंट का बहुत साथ था, लोगों का बहुत साथ था, और उनको विश्वास दिलाया गया कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी, भल भारत पाकिस्तान दो भाग हो गए थे, परंतु ये तो भगवान का आदेश था और भविष्य की बात थी, विश्व सेवा भारत से करना ही सहज होना था। तो बाबा ने पहले 3-4 भाई बहनों की एक ग्रुप को भेजा अहमदाबाद में। बाबा का एक गुरु थे जो स्वामी गंगेश्वरानंद, अहमदाबाद में वेद मंदिर है, वहां वो रहते थे। तो बाबा ने गुरुजी को फोन किया कि ये आ रहे हैं, आप उनको ऐसा योग्य स्थान बताइए जहां 400 लोगों के साथ हम रह सके। तो फिर गुरु गंगेश्वरानंद जी ने बताया कि आप माउंट पर जाइए, वहां राजस्थान के बहुत राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल खाली पड़े हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं। तो फिर वो लोग यहाँ आए और सबसे पहले भरतपुर, राजस्थान का जो भरतपुर स्टेट का जो महाराजा का यहाँ बंगला है, वहां पर ये पहले, अभी तो वो एक होटल बन गया है, सनराइज होटल। फिर वहां से कोटा हाउस, फिर धौलपुर हाउस, और अभी जो पांडव भवन है वो पुकरान के राजा का वो 7 एकड़ की जमीन थी, वो उसको लिया गया और वहां ये कराची से गुजरात के ओखा बंदर पर शिफ्ट हुए जो द्वारका के पास ओखा है, और वहां से फिर ट्रेन द्वारा ये आबू रोड आए। तो इस प्रकार से ये भारत में आए और 52 से आप सोचिए 14 वर्ष 400 लोग 350-400 लोगों का इतना भरण पोषण हुआ। तो फिर बाबा ने 52 में सेवा का आदेश दिया, जिनके भी मित्र संबंधी थे, कोई संपर्क थे, कोई निमंत्रण था, क्योंकि सबको पता तो चला कि ये भारत में शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कईयों ने निमंत्रण दिया पाइए यहाँ सत्संग करिए। तो बाबा ने उस हिसाब से दिल्ली, पंजाब और इधर वहां सबसे पहला केंद्र दिल्ली में खुला। जमुना के कंठे पर बैठकर ये लोग सेवा करते थे और फिर इतनी साधना करके निकली हुई बहने थी, ब्रह्मचर्य का पालन, अन्न शुद्धि, एक परमात्मा के प्रति प्यार, समर्पण, सत्य ज्ञान, शुद्ध चरित्र, तो ये जो उनके पास अलौकिक संपदा थी, तो काफी इनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, लोगों का सहयोग मिला और केंद्र खुलते गए। तो बाबा के होते लगभग 137 केंद्र धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 50 में आए, 69 जनवरी में बाबा ने शरीर छोड़ा, तो उन 18-19 साल में इतने धीरे धीरे केंद्र खुलते गए। आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई गुरु नहीं, भक्ति नहीं, क्रियाकांड नहीं, बाह्याचार नहीं, ज्ञान योग की बातें। तो धर्म संप्रदाय वालों का भी कितना विरोध होता है कि ये कौन नए हैं, भक्ति में नहीं मानते हैं, तिलक नहीं करते हैं, ये और धर्म के हैं। बहुत सारे शुरू में पंजाब क्षेत्र में काफी विघ्न आए, पर ये तो ईश्वर का कार्य है, सत्य ज्ञान है, सफलता तो होनी ही है। तो इस प्रकार सेवा शुरू हुई। 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, 67 में बाबा का राइट हैंड एक मम्मा जिन्होंने 65 में, विश्व किशोर दादा 67 में शरीर छोड़ा, और ब्रह्मा बाबा 1969 में जनवरी मास में बाबा ने शरीर छोड़ा। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो लोगों को था कि अब देखते हैं इनकी संस्था कैसे चलती है। जैसे और धर्म संप्रदाय मठ पंथ में होता है कि गुरु जी गए तो वो संस्था हिल जाती है या विभाजित हो जाती है, तो लोगों का यही वाइब्रेशन था कि अब देखते हैं इनकी संस्था कैसे चलती है। पर वास्तव में ये कोई व्यक्ति पर आधारित है ही नहीं, ब्रह्मा बाबा तो एक माध्यम थे, वो प्रथम आत्मा जिसने भगवान के ज्ञान को जीवन में संपूर्ण रूप से धारण किया, वो एक एग्जाम्पल है, एक आदर्श है। पर यहाँ कोई वो गुरु के रूप में नहीं मानते, ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, ब्रह्मा कोई देवता नहीं है, ब्रह्मा तो एक योगी आत्मा है। तो परमात्मा के ज्ञान योग पर फिर दादी प्रकाशमणि जी को निमित्त बनाया गया। तो बाबा जब थे 18 साल भारत में, तो विभिन्न शहरों में भी सेवा, जैसे अभी हम सेवा करते हैं, उस समय बाबा मम्मा सब जगह जाकर सेवा। ये बॉम्बे का चित्र है कि बाबा कैसे केंद्रों में जाते थे सबको पालना। बाबा के साथ जो है वो दादी प्रकाशमणि जी है। ये दिल्ली का है, दिल्ली रजौरी गार्डन में पहला केंद्र कमला नगर में खुला और फिर रजौरी गार्डन में खुला। ये दादी जानकी जी जो बाबा ने फिर उनको पुणे में रखा था, कैसे परिवार परिवार बाबा के पास आते थे, मम्मा भी सेवा में जाती थी हर जगह। ये कानपुर का चित्र है जहां मम्मा गई तो कैसे स्वागत किया गया। और आबू में भी फिर हर केंद्रों के द्वारा जो भाई बहने नियमित क्लास में जाते, ज्ञान योग करते और इन ईश्वरीय नियमों का पालन करते, फिर वो माउंट आबू वो रेगुलर भाई बहनों की क्लास प्रोग्राम चलते, उसमें रिफ्रेश होने आते और कैसे स्पिरिचुअली रिफ्रेश होकर एम्पावर होकर वो जाते हैं। तो 18 जनवरी बाबा ने शरीर छोड़ा, उस समय बाबा के सामने दादी प्रकाशमणि थे और कैसे बाबा ने हाथ में हाथ देकर बाबा व्यक्त हुए और दादी में कैसे शक्तियां भरी और दादी निमित्त बने। आप पांडव भवन जाएंगे देखेंगे ये प्रकाश स्तंभ जहां बाबा का अग्नि संस्कार हुआ था और वहां कैसे सभी साइलेंस में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं। ये मम्मा जो 24 जून 65 में शरीर छोड़ा, ये एडिशनल हेड बने दादी प्रकाशमणि के साथ दीदी मनमोहिनी जी, बहुत ही योग शक्ति वाली आत्मा और बहुत परख शक्ति और बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस में मजबूत और सबको नियम मर्यादा अनुसार चलाने वाली। ये दादी प्रकाशमणि जी 25 अगस्त 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ा, परंतु बहुत ही उमंग उत्साह, बहुत ही मतलब पवित्र आत्मा, खुद के संस्कार इतने सरल कि उनको खुद के लिए कोई टाइम देना नहीं पड़ा, वो टोटल सेवा में रहे। और अपने होते हमने बताया था कि 38 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने 8,000 केंद्र खोले, हम 16,000 से अधिक समर्पित बहने तैयार हुई। तो ये दादियां हमारे लिए आदर्श है, रोल मॉडल है कि व्यक्ति अपने निश्चय और समर्पण से अपने जीवन को इस दुनिया में रहते भी श्रेष्ठ बना सकता है। ये दादी जानकी जी अभी 1 जनवरी इनको 104 साल पूरे होंगे, 105वां वर्ष शुरू होगा और आज दादी आ भी रही है। देखो दादी 3-4 स्टैंडर्ड ही पढ़ी, 20 साल की आयु में समर्पित हुई और बाबा ने 1974 में उनको लंदन भेजा विदेश सेवा के लिए, पर अपनी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर 140 देशों में उन्होंने केंद्र खोले। कैसे अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजियन, हर गवर्नमेंट के अपने कायदे कानून विदेश में, वहां स्पिरिचुअलिटी से वहां के ही हैंड्स को तैयार करके केंद्र खोलना एक बहुत बड़ी कला दादी में। भारत से तो मुश्किल से 15-20 बहने गई, हर कॉन्टिनेंट की हेड भारत की बहने हैं, पर वहां जाके वहां के हैंड्स तैयार करके उन विदेशी भाई बहनों को योगी बनाकर उनके द्वारा केंद्र चलाए। आज दादी आएंगे ना आप सबसे मिलने। ये दादी चंद्रमणि जी जिन इनका भी पूरा, ये भी बहुत करोड़पति परिवार की, पूरा परिवार समर्पित, माँ बाप भी, और इन्होंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सेवाओं को संभाला। वहां शुरुआत में बहुत विघ्न, पर बाबा इनको शेरे पंजाब कहते थे, और सचमुच ऐसी शेरणी शक्ति कि इतने विघ्न के बावजूद भी, क्योंकि अमृतसर में दादी थी और अमृतसर एक शहर से 100 बहनें समर्पित हुई तो पूरी हलचल हो गई कि ये कौन है जो ऐसा कर रहे हैं। पर बहुत विल पावर वाली आत्मा थी। अब बताइए चेहरे से ये कौन है? ये ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री निर्मल शांता दादी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा की सेवाओं को संभाला और नेपाल, इन स्टेट में सेवाएं दादी ने फैलाई। और बहुत ही रॉयल संस्कार इनके परिवार के मुख से हम लोगों ने कभी भी नहीं सुना कि वे हमारे बाप का है, हमारे बाप ने इतनी प्रॉपर्टी, कभी नहीं, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए, नेवर। उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। ये है यूनिक आत्मा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसका रोल है ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार जी वो ट्रांस मैसेंजर जिनके द्वारा अव्यक्त मुरली चली। ब्रह्मा बाबा के हयाती में जो ज्ञान के महावाक्य उच्चारण हुए उसको हम साकार मुरली कहते हैं, जो रोज हम लोग सुनते हैं। पर बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार जी वो माध्यम बने जिसके तन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा आकर अव्यक्ति महावाक्य उच्चारण करते। वो अभी एडिशनल हेड हैं, पर 2018 से दादी की तबीयत मतलब बहुत ही कमजोर है, स्टेबल बहुत अच्छे पर ताकत नहीं है। तो दादी अभी बॉम्बे हैं 1.5-2 साल से, तो वहां उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। पर बहुत ही दिव्य आत्मा, अलौकिक, जिसके द्वारा भगवान ने पार्ट प्ले किए। ये दादी मनोहर इंदिरा जी इस कैंपस की वही डायरेक्टर थे 10 साल, और मुझे भी परम सौभाग्य मिला दादी के साथ। मैं भी इस कैंपस में 16 साल सेवाएं की दादी के संग संग, और उससे पहले दादी पूरे हरियाणा की सेवा, ओवरऑल चंद्रमणि दादी थे पर हरियाणा स्टेट की पूरी सेवाएं इन्होंने डेवलप की। अभी भी उनके ही तैयार की हुई बहनें सेवाएं, पानीपत है, ये गुड़गांव है, जो भी है वहां सब हरियाणा का उनके हैंड्स है। ये दादी शांतामणि जी जो शांतिवन कॉम्प्लेक्स की डायरेक्टर थी, इनके पिताजी जो कश्मीर में बाबा से मिले और ज्ञान लिया, और ये मम्मा की मौसेरी बहन होती, तो पूरे इनका परिवार भी, और मम्मा का पिता नहीं थे पर मम्मा की माँ और बहन ये समर्पित हो गए। ये जॉइंट हेड हैं अभी रत्न मोहिनी दादी जी, वो भी 95 वर्ष के हुए हैं पर रोज मॉर्निंग क्लास वही कराते हैं अभी भी। तो ये हमारी त्रिमूर्ति दादियां, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार जी, जिन्होंने इस यज्ञ को ओवरऑल संभाला और पूरे विश्व में फैलाया। ये हैं वो आत्मा, बाबा की लौकिक पुत्र वधु ब्रजेंद्रा दादी, जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट की सेवाएं संभाली, बॉम्बे में रहते थे। इस आत्मा ने परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण और दादा लेखराज का कैसे ब्रह्मा रूप में बदलना, इस साक्षात्कार की ये साक्षी है उस क्षण की। ये भी बहुत धनिक परिवार की थी, पर बाबा ने जीवन समर्पण किया, इन्होंने भी समर्पण किया। हाँ, गंगे दादी जी यूपी की सेवाएं गंगे दादी ने संभाली, इनको बहुत बंधन थे, आठ आठ तालों में बंद उनको रखते थे, पर इनके लगन आखिर उन माँ बाप को छुट्टी देनी ही पड़ी। ये दादी हृदय पुष्पा, सिंधी हिंदी भी नहीं आती, पर इतनी पवित्र और योगी आत्मा। बाबा ने इनको बेंगलोर भेजा जहां ना इंग्लिश आती ना कन्नड़ भाषा आती, पर इनकी प्रतिभा इतनी दिव्य थी, बहुत साक्षात्कार सबको होते थे, और पूरा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला की सेवा इन्होंने फैलाई। ये भारत का प्रथम ब्रह्मा कुमार और इस विद्यालय का प्रथम स्पोक्समैन, और ब्रह्मा कुमारीज के सभी मूल साहित्य का ये लेखक, बहुत बहुत बौद्धिक और आध्यात्मिक आत्मा, बहुत यूनिक आत्मा। जगदीश भाई जी दिल्ली रहते थे और अभी ये विद्यालय के हमारे मुख्य सेक्रेटरी जनरल निर्वैर भाई जी जो शांतिवन में रहते हैं और अभी ब्रह्मा बाबा की तरह दादियों के साथ पूरा यज्ञ संभालते हैं। ये रमेश भाई जी, वो भी चार मुख्य भाई, जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, निर्वैर भाई जी और ब्रिजमोहन भाई जी, ये पूरा लीगल फाइनेंस संभालते थे। देश विदेश का बहुत कायदे कानून का ज्ञान, बहुत फिलोसॉफी स्टडी किए हुए, मतलब बहुत नियम कायदे से इन्होंने इस यज्ञ को संभाला। आज तक विद्यालय स्वयं अपना सब हिसाब किताब करती है, बाकी तो कितनी संस्थाओं में गवर्नमेंट के लोग बैठ गए, पर इन्होंने शुरू से बहुत नियम से कारोबार कराया। ये ब्रिजमोहन भाई जी जिन्होंने देहली की सेवाओं को संभाला है, और वो भी हमारे वरिष्ठ भ्राता है, बहुत अच्छे चिंतक, लेखक, वक्ता है। तो ये है शॉर्ट में बाबा की जीवन कहानी और विद्यालय का इतिहास। ओम शांति। एक मिनट बाबा को याद करेंगे।